वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी तरह के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 7, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राज अपने फोन से उस शंकु का वीडियो बना रहा था कि तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़कने के साथ ही कमरे में भी तेज रोशनी की लहर दिखाई दी और इस सब के बीच सुनाई दी राज के चीखने की आवाज। अनंत ने राज की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कमरे में उठी रोशनी की लहर इतनी तेज थी कि इसने अनंत को लगभग अंधा कर दिया था। पिछले 2 दिनों की तरह ही इस बार भी बाहर तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो चुका था। वहीं कमरे में अनंत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आज अचानक से जो कुछ हुआ है इसका कारण क्या है। कुछ सेकंड में वो कुछ देखने समझने की हालत में पहुंचा तो उसने सबसे पहले राज को संभाला। राज एक कोने में डरा सहमा खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ था। हड़बड़ाहट में ही अनंत चिल्ला पड़ा, राज, आर यू ओके? राज ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यस सर। राज इस वक्त आंखें फाड़ फाड़ कर फर्श की तरफ देख रहा था। अनंत ने देखा राज का फोन फर्श पर गिरा हुआ था। अनंत ने आगे बढ़कर ठिठकते हुए फोन को उठाया। फोन एकदम गर्म था लेकिन हाथ में पकड़ा जा सकता था। अनंत ने फोन को पलटकर देखा तो पता लगा कि फोन का डिस्प्ले खराब हो चुका था। राज ने फोन लेकर उसे थपेड़ते हुए कहा, अरे ये फोन को क्या हो गया, इसका डिस्प्ले एकदम से चला गया। उन्होंने फोन को संभाला तो पता लगा कि फोन जैसे फूंक गया था। उसकी बॉडी पर भी जले हुए काले निशान दिखाई दे रहे थे। राज हैरत में पड़ गया, ये फोन तो ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। राज की बात सुनकर अनंत बोल पड़ा, राज यू आर लकी, उस कोन में से तेज बिजली निकली थी, उसने तुम्हारे मोबाइल फोन को चलाकर रख दिया। अनंत ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अनंत की बात सुनते ही राज एकदम सुन्न सा पड़ गया और अपना फोन हाथ में लिए हुए ही वो बिस्तर पर धम से बैठ गया। अनंत ने आगे कहा, आई डोंट नो, लेकिन लग रहा है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बीच का कोई कनेक्शन था ये। राज ने जैसे सदमे की हालत में कहना शुरू किया, सर बरसों पहले एक जगह मैंने ऐसे एक एक्सीडेंट के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था जिसमें हाई टेंशन लाइंस के करीब डिजिटल कैमरा से फोटो क्लिक करने पर कुछ हुआ था, पता नहीं सच था या झूठ। अनंत ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, हाँ इंटरनेट पे वैसे भी झूठ ही झूठ बिखरा पड़ा है, लेकिन अनंत कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मोबाइल फोन्स वगैरह आसमानी बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कोन से निकलने वाली बिजली भी आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह थी। ओ नो, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतनी खतरनाक बिजली को अपनी तरफ कैसे खींच लिया। अनंत गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद राज ने बोलना शुरू किया, लेकिन सर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने रबर की चप्पल पहन रखी थी, वरना पता नहीं क्या होता। अनंत का ध्यान राज की तरफ गया, वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही राज ने जवाब दिया, नहीं सर मैं वापस नहीं जाऊंगा। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गया। राज थोड़ी देर वैसे ही लेटा रहा, लेकिन उसके बाद वो भी सो गया। 13 फरवरी 2019 सुबह के वक्त गेस्ट हाउस में राज ने चाय पीते पीते पूछा, सर आज 13 फरवरी हो गई है, 15 फरवरी में 2 दिन बाकी हैं, तो अनंत सर आज हम क्या कर रहे हैं। अनंत ने जवाब दिया, मैंने ग्रंथालय के बारे में पता किया था, गेस्ट हाउस का मालिक बता रहा था कि वहां आसानी से एंट्री नहीं मिलती है, तो या तो मुझे 1-2 जगह फोन करने पड़ेंगे या फिर एक तरीका और भी है हमारे पास, हम कुंवर अनूप सिंह से बात करके देखते हैं, वो हेल्प कर सकता है हमारी। यस सर ही कैन हेल्प अस, लेकिन गेस्ट हाउस का ओनर तो कह रहा था कि वो ठीक आदमी नहीं है। अनंत ने जूते के फीते बांधते हुए जवाब दिया, देख हमें क्या फर्क पड़ता है इस सबसे, और फिर दूसरा मैटर ये भी हो सकता है कि वो भी होटल बिजनेस में है, कई बार लोग इसलिए भी आपस में चिढ़ते हैं कि सामने वाला हमारा क्लाइंट ना तोड़ ले। सुबह के 8 बज गए हैं, मैं अनूप सिंह को फोन कर लेता हूँ। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक, वरना फिर कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन आज हम ग्रंथालय में जाकर रहेंगे। अनंत ने अपना फोन निकालकर कुंवर अनूप सिंह से बात की। गेस्ट हाउस का मालिक भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अनूप सिंह की पहुंच बहुत अच्छी थी। उसने उसी वक्त उन्हें ग्रंथालय बुला लिया और अपने साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अंदर एंट्री दिला दी। अनंत जी, आप आराम से यहां किताबें देखिए, मैं आपसे शाम को बात करता हूं, कुंवर अनूप सिंह ने विदा लेते हुए कहा। अनंत ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां मौजूद किताबों पर निगाह डाली। भाई राज, 500 किताबें तो होंगी यहां पर, लेकिन हमारे काम की किताब कहां है? सर, भूप सिंह ने किताब का नाम भी नहीं बताया था, क्या यहां लाइब्रेरी कार्ड जैसा कोई सिस्टम है? राज ने चारों तरफ देखकर आगे कहा, यहां तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जो भी करना है वो सीक्रेटली करना पड़ेगा। अनंत ने वहां मौजूद एक कर्मचारी से कुछ किताबों के बारे में जानकारी ली। ग्रंथालय में किताबों को राज परिवार के इतिहास, वंशावली, रीति रिवाज, पाक शास्त्र वगैरह विषयों के आधार पर जमाया गया था। अनंत ने राज को वहां से किताबें देखने के लिए कहा और खुद एक कोने में रखी कुछ किताबों को तलाशने लगा। वो तेजी से किताबों के पन्ने पलट रहा था। कोई घंटे भर के बाद एक ऐसी किताब उसके हाथ लगी जिसमें से कुछ पन्ने फाड़े जा चुके थे। ये किताब फटी हुई क्यों है? अनंत ने उस किताब को देखना शुरू किया। कुछ पन्ने पलटते ही उसे वहां कुछ दिखाई दिया। ये इमारत का चित्र, ये तो उस पेंटिंग में था। अनंत ने कुछ पन्ने और पलटे। जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये वही किताब है जिसका जिक्र भूप सिंह ने किया था। उस पेंटिंग में बनी इमारत, रेत के धोरे और ऊंट, तीनों चित्र इस किताब के ही हैं, तो आई एम श्योर वो निशान भी इस किताब में होगा। कहां है, कहां है, कहां है? अनंत किताब के पन्ने पलटता जा रहा था। अचानक से उसकी बांछें खिल उठी। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। उसने राज को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और कहा, राज, तुझे सीसीटीवी कैमरों से बचाकर इस किताब के पन्नों की फोटो खींचनी है। बट सर, मेरे पास फोन नहीं है, रात को खराब हो चुका है, राज ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। अनंत ने उसे फोन पकड़ाते हुए कहा, मैं वहां जो बंदा बैठा हुआ है उसे बातों में लगाता हूं, तू 2-3 मिनट में यह काम पूरा कर ले। अनंत ग्रंथालय में बैठे कर्मचारी के पास जाकर उससे बात करने लगा। इस बीच राज ने कैमरों से बचाकर उस किताब के सारे पन्नों की फोटो खींच ली और अनंत से कहा, सर अब चलें यहां से। ग्रंथालय से निकलकर अनंत ने मोबाइल फोन से किताब की सारी फोटोज अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर ली। लैपटॉप में आंखें गड़ाए अनंत तेजी से उस किताब के पन्नों को समझने की कोशिश कर रहा था। किताब के काफी सारे पन्ने फटे हुए थे। इसके बाद भी उसके सामने सारी तस्वीर साफ होती जा रही थी। पास की सीट पर बैठा राज कभी लैपटॉप की स्क्रीन को तो कभी अनंत के चेहरे की बदलती भाव भंगिमाओं को देख रहा था। बीच में राज ने अनंत से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन अनंत ने उसे अंगुली के इशारे से चुप करवा दिया। राज को अनंत की इस आदत के बारे में अच्छे से पता था। शूटिंग के वक्त भी जब अनंत किसी काम में डूबा हुआ होता था तो उस वक्त भी उसे किसी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। राज को समझ आ गया था कि पिछले 2-3 दिनों से वो जिस चीज के पीछे भटक रहे थे, शायद इस किताब की बदौलत वो उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। अनंत किताब के कुछ पन्नों को बार बार पढ़ रहा था और इसी के साथ उसके चेहरे पर उलझन की लकीरें दिखाई दे रही थी। यार क्या है यह सब? आप सुन रहे थे काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 7। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल।